ओम शांति। अभी के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता मोहन सिंगल जी। एक हाथ हिलाकर भाई जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। आप यूपी की धरनी देहरादून से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1962 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला, आपको साकार मम्मा बाबा की पालना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तभी से आप इस ईश्वरीय सेवा में कार्यरत है। शुरुआत में आपने आसाम गुजरात बिहार में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। 1967 में आपने मास्टर डिग्री प्राप्त की, फिर ONGC ज्वाइन किया। 28 वर्षों तक आप ONGC में कार्यरत रहे, फिर 1996 में ONGC में सुपरिटेंडिंग जियोफिजिस्ट के पद से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आप ज्ञान सरोवर एकेडमी के कोऑर्डिनेटर का पदभार संभाल रहे हैं। वर्ष 1985 में राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत यूथ विंग के सेक्रेटरी थे और उस समय आपने करीब 12 पद यात्राओं का आयोजन किया। 1988 में साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे, वर्तमान में आप उसके चेयरपर्सन हैं। कई सारी प्रदर्शनियों का आपने निर्माण किया है और कई पुस्तकें भी आपने लिखी है। राष्ट्रीय स्तर पर आपको पर्यावरण श्री अवार्ड मिला है और इंटरनेशनल लेवल पर भी अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे बीच में हैं। आज का विषय है खुशनुमा जीवन, तो इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसे यज्ञ के आरंभ में हम सब ने सुना है, ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण वस ओम की ध्वनि किया करते थे। अंदर गहरा श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ वास्तव में देखा जाए तो ओम शांति का महामंत्री है जो हमें सदैव खुशनुमा जीवन के लिए प्रेरित करता है, सफलता दिलाता है और अपने भविष्य पथ का साक्षात्कार भी कराता है। तो ये ओम शांति का मंत्र जो है, इसकी बाबा समय प्रति समय याद भी दिलाते हैं। आज की मुरली भी सबने सुनी होगी, उसमें खुशी की क्या बात बाबा ने कही थी। आज की मुरली में खुशी, जैसे जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, और दीपक सदैव जलता रहे उसके लिए क्या करते हैं, घृत डालते हैं। तो हमारा भी आत्मा का ज्ञान दीपक जो है सदा जलता रहे, कभी मंद न हो, कभी बुझे नहीं, उसके लिए हमें कौन सा घृत डालना है, ज्ञान का घृत प्रतिदिन डालना है और वो ज्ञान का घृत पड़ता रहेगा। जितनी जितनी ज्योति हमारी जगी रहेगी उतना उतना खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, चढ़ा भी रहेगा सदा। तो आज बाबा ने खुशी के ऊपर हम बच्चों को ये ज्ञान घृत की बात हम बच्चों के सम्मुख रखी है। क्यों? क्योंकि सतयुग में तो हम सदा खुश ही हैं, वहां तो सुख शांति है, इसीलिए खुशी है। कहते भी है ना, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जहाँ हेल्थ है वेल्थ है, हैप्पीनेस ही है। तो इसीलिए सदा खुशी के लिए हमें ये संस्कार जो भी हम यहाँ डालते हैं वही संस्कार हम सतयुग में ले जाते हैं, वही वहाँ परमानेंट बने रहते हैं 21 जन्मों तक। भले थोड़ी उसकी डिग्री जरा कम होती होती जाती है प्रकृति के नियम के अनुसार, हर चीज थोड़ा कम होती चली जाती है, लेकिन फिर भी 2500 वर्ष तक 21 जन्मों तक वो संस्कार कायम रहते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि यहाँ पर ही उन सब संस्कारों को धारण किया जाए जैसे कि सतयुग में हमारे संस्कार होंगे। हम सब जानते हैं, मुझे इस संदर्भ में एक बात याद आती है, देहरादून की ही बात है। जैसे बताया भी गया, मेरा लौकिक जन्म भी देहरादून में ही हुआ, क्लेमेंटाउन में, और प्रारंभिक शिक्षाएं भी वहां पर प्राप्त की 8th क्लास तक। और चूंकि बाद में तो फादर की ट्रांसफरेबल पोस्ट होने के कारण अलग अलग जगह जाते रहे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ आदि, और लखनऊ से ही ये ज्ञान लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चूंकि देहरादून में पेरेंट्स थे, रहते थे, तो ऐसे ही देहरादून गया हुआ था। और आप सब तो जानते हैं विमला बहन जी भी वहाँ थे, प्रेम बहन जी के साथ विमला बहन थे। आप ये ग्रुप कहाँ का है? वहीं का ही है ना, उसी का ग्रुप का, इसलिए काफी तो इस बात को जानते भी हों। तो ये बात है सन 63-64 की, क्योंकि 62 में ज्ञान में आए, 63 में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए IIT में, और उसके बाद बीच बीच में जब छुट्टियां होती थी वो देहरादून जाते थे। तो देहरादून सेंटर पर जाते थे तो एक गुरुवार था, विमला बहन तो संदेशी थी ही, तो भोग लगाया उन्होंने, फिर भोग का संदेश सुनाया। तो संदेश ये था कि बाबा ने एक बड़ा चबूतरा सा दिखाया, सीमेंटेड चबूतरा बड़ा, और उसके पास एक बच्चा लगभग 13-14 साल का, 15 साल का, वो वहाँ पर बैठा हुआ और बड़े प्यार से नमन कर रहा है, और हे प्रभु बस मुझे भी इनके जैसा बनने का आप शक्ति दो। और ऐसा करके बस उसके नेत्रों से भी अश्रु धारा जैसे बह रही है और वो ये ऐसी प्रार्थना कर रहा है। तो फिर संदेशी नीचे आई, उसने फिर और बताया पूरा कि बाबा से पूछा, बाबा ने पहले संदेशी से पूछा, बच्ची ये कौन है, ये क्या है चबूतरा सा, कि बाबा मुझे तो मालूम नहीं, आप बताओ। तो बाबा ने बताया, बच्ची ये जो चबूतरा दिख रहा है सीमेंटेड, ये है दिल्ली का राजघाट, गांधी जी की समाधि स्थल। और यहाँ पर सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, सारा दिन रात हमेशा भीड़ लगी रहती है, लोग आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं। ये बच्चा भी दिल्ली के पास, पता नहीं क्या जगह का नाम तो नहीं बताया, वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर कोई जगह है, वहाँ से आता है, और जब जब ये दिल्ली आता है तो यहाँ जरूर आता है, और यहाँ आके ये यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे ऐसा, क्योंकि गांधी जी का स्मारक था, गांधी जी जैसा ऐसा सत्य और अहिंसा का मुझे ऐसा वरदान दो प्रभु कि बस मैं ऐसा बनूं और इस रीति से मैं जीवन में इन गुणों को धारण कर सकूं। फिर बाबा ने कहा कि समझा बच्ची, और इसका क्या रहस्य है? इसे ये नहीं मालूम बच्चे को कि ये खुद ही गांधी की आत्मा है, इसीलिए इसमें वही संस्कार जागृत पिछले जन्म के हो रखे हैं, और वो ही संस्कार इसे बार बार, और इसके साथ ही दिल्ली आते हैं, सब तरफ घूमने जाते हैं, चांदनी चौक, लाल किला, या दिल्ली में बहुत घूमने की जगह है, लेकिन ये बच्चा हमेशा यहीं आता है और यही प्रार्थना करता है प्रभु से भी और गांधी बापू से, है बापू बस मुझे आप जैसा बनना है, आप जैसा मुझके मेरे अंदर ये गुण आए, देशभक्ति के, सत्य और अहिंसा के, आदि आदि। तो देखो बच्ची, आत्मा कैसे संस्कार लेकर के जाती है, पिछले जन्म के संस्कार लेके गई और इसका जन्म हुआ, और इतना कोई पॉलिटिकल घराने में नहीं है, लेकिन इसको अपने पूर्व जन्म के संस्कार अभी तक भी बहुत खींच रहे हैं। ये भी सन 1963-64 की बात है, कुछ उस समय की, और देहरादून की बात है, वहाँ पर विमला बहन जी, प्रेम बहन जी के पास रहते थे। तो ऐसे ही हमें भी सतयुग का तो मालूम है, यहाँ उल्टा है कि वो संस्कार कैसे होंगे वो हमें मालूम है, और उन्हीं संस्कारों को अब हमें, हमारे अंदर हैं, ऑलरेडी है, लेकिन फिर एमर्ज करना है, बाहर लाना है, वो नीचे थोड़े दब गए हैं ये सारे संस्कार, पूरा खुशी के, आनंद के, प्रेम के, पवित्रता, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, शक्तियां हैं, संस्कार हैं, कोई भी चीज डालते हैं ना, तो पहले मतलब कोई बोरी भरी हुई है तो नीचे इसका सामान हमें निकालना है तो पहले ऊपर का सामान बाहर निकालना पड़ेगा, और तब नीचे से वो चीज निकाल सकेंगे। ऐसे ये संस्कार आत्मा में दब गए हैं, बस ऊपर जितने भी वर्तमान जन्म के और द्वापर युग के बाद के जो संस्कारों ने उन संस्कारों को ढक लिया है वो हम निकालेंगे तो वो संस्कार हमारे जागृत हो जाएंगे। और जैसा आज का विषय भी है, बाबा भी चाहता है बच्चे अपने ओरिजिनल संस्कार, जो अनादि और आदि संस्कार है, उन आत्मा के संस्कारों को जागृत करो। तो उसके लिए यही है कि जो भी ऊपर के संस्कार हैं, बाबा की मुरली कुछ दिन पहले भी सुन रहे थे, बच्चों में विकारी संस्कार तो काफी हद तक खत्म हो गए हैं। एक बार हम लोगों की, पुराने भाइयों की भट्टी हो रही थी, तब गुलजार दादी की तबीयत भी ठीक थी, 15-20 साल पहले की बात है लगभग, और वो भट्टी में संदेश लेके आए थे कि बाबा इन सब बच्चों को एक सर्टिफिकेट तो देता है, क्या कि इनमें विकारी संस्कार नहीं है, लेकिन व्यर्थ अभी भी चलता है बच्चों में, और व्यर्थ में बहुत समय और शक्ति जाती है, इसीलिए उस व्यर्थ को अब निकालना है, तो अंदर के संस्कार सब जागृत हो जाएंगे। इस संदर्भ में एक बात याद आती है कि एक शिल्पकार था, पत्थर की मूर्तियां गढ़ता था, बहुत अच्छे शिल्प बनाता था मूर्तियां, सब बहुत तारीफ करते थे और भाई वाह क्या मूर्ति बनाई है बहुत अच्छी। सब कोई उसके पास गया कि आप ये कैसे इतनी एक्यूरेट और इतनी बढ़िया मूर्ति बना लेते हो, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मूर्ति बनाता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ कि पत्थर जिसमें से शिल्प बनाना होता है उसको लेके छेनी हथौड़े से उसके चारों तरफ जितना वेस्ट है व्यर्थ है उसे निकाल देता हूँ, अंदर की मूर्ति अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। बात वही है लेकिन निकालता वो बाहर का व्यर्थ का है, मूर्ति प्रत्यक्ष। बस यही बात हम सब की भी है, हमारे अंदर हमारी संपूर्णता की मूर्ति है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी ना, आप सबने सुना होगा जब संदेशी जाती थी तो कई बार विशेष करके प्रारंभिक काल में जब हैदराबाद सिंध कराची में हमारा यज्ञ था तो उस समय विशेष करके बाबा समय प्रति समय पूछा करते थे, अच्छा वतन में जा रही हो बच्ची, तो देखना उस ब्रह्मा में और इस ब्रह्मा में क्या अंतर है। क्यों पूछते थे बाबा? कंपेयर कर सके कि वो मेरा लास्ट स्टेज है, मुझे वैसा बनना है और अभी आज तक मैं कहाँ तक पहुंचा हूं। संदेशी जाती थी आती थी और अक्सर करके यही बताते थे, बाबा बाकी तो सब बिल्कुल वैसा ही है, मूरत शक्ल सूरत वो तो होगी, वही साक्षात साकार ब्रह्मा यहाँ है, वही सूक्ष्म ब्रह्म है, लेकिन उनमें तेज बहुत है, लाइट, उनका ऑरा भी बहुत तेज शक्तिवान है, उनके पास जाते ही ऐसी वाइब्रेशंस आती है एकदम जैसे खींच रहे। तो बाबा को माइंड में हमेशा ये रहता था कि मुझे अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है तो मुझे भी वैसी ही मूर्त बनना होगा, उसी सूक्ष्म स्थिति को प्राप्त करना होगा। तो इसीलिए साकार में हमें तो बाबा के साथ रहने का काफ़ी सौभाग्य मिला, 62 में ज्ञान में आए, 62 से 69 तक दसियों बार मिले होंगे, हर साल तो मधुबन में आते थे, तब तो पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, स्टूडेंट लाइफ थी शुरू में, 63 से 67 तक इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ते थे, कई बार छुट्टियां भी होती थी, एक दो बार स्ट्राइक भी होती जाती थी वहां पर, बस उन छुट्टियों में बाबा के पास मधुबन आ जाते थे बाबा से मिलने का सौभाग्य। तो बाबा से जब मिलते थे तो बाबा के तो माइंड में था भाई मैं ही प्रजापिता हूँ, ब्रह्मा हूँ, ये सब बच्चे हैं, उसी दृष्टि से। तो कोई भी जाता था बाबा ऐसे हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ प्यारे बच्चे, बस बाबा ने हाथ फैलाए और हम सब चुंबक की तरह खींचते हुए बाबा की बाह में आ जाते थे। और क्या अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता था, कितनी खुशी होती थी, क्योंकि बाबा तो थी तो वो कृष्ण की आत्मा और संपूर्णता की तरफ बढ़ रही थी, नंबर वन सृष्टि की आत्मा, इसलिए उस आत्मा में इस अंतिम जन्म में भी इतना आकर्षण था, इतना तेज था, फिजिकल पर्सनैलिटी भी बाबा की ऐसी थी भाई, लंबा कद और गौरवर्ण, स्नेह में डूबी हुई आंखें एकदम, और इतना पुल, मैग्नेटिक पुल इसका उनका, कभी कभी तो जब हम भी अच्छी अवस्था में होते थे तो बाबा का ऑरा भी जैसे देवी देवताओं के चित्र के पीछे होता है ना, वो भी देखने में स्पष्ट नजर आ जाता था, तो हम लोग आंख भी झपकते थे, मलते थे और बस वो जैसे गायब हो जाता, क्योंकि फिजिकली तो होता नहीं, लेकिन जैसा व्यक्ति जिस भावना से जाता है वैसा ही उसे फिर दिव्य साक्षात्कार साक्षात्कार उस रीति से नहीं कि संदेशी कोई जाए, दिव्यता और वो डिवाइन विजन जो बाबा कहता मैंने आपको तीसरा नेत्र दिया है, उस ज्ञान नेत्र से वैसा साक्षात्कार हो जाता। तो एक तो हमें खुशनुमा जीवन के लिए ना ये बुद्धि में सदैव रखना है, कोई भी बात हो जाए मुझे और किसी को नहीं देखना है, बस मैं और बाबा और जो ड्रामा की घटनाएं हो, क्योंकि अंत में हमें साक्षी अवस्था को प्राप्त करना है, साक्षी मूर्त बनना है। तो एक तो ये बात हमारी बुद्धि में सदा रहे। दूसरा कि जैसा खुशी कब होती है जीवन में, जब सफलताएं मिलती हैं, कोई खुशी का ओकेजन होता है, कारण होता है, और जीवन में हमने कुछ सोचा और वो हो गया पूरा, सफलता हो गई। इसीलिए साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने या मनीषी व्यक्ति हैं, उन्होंने एक हैप्पीनेस का फार्मूला दिया है। सिंपल फार्मूला है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। यानी खुशी जो है अचीवमेंट माने प्राप्तियां जो है डिवाइडेड बाय नीचे एक्सपेक्टेशन यानी आशाएं, दूसरे से हम जो आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो जब हमें अचीवमेंट होती है, हमने सोचा भाई मानो मेरे बच्चे का एडमिशन इंजीनियरिंग में हो जाए, मेडिकल में हो जाए, बच्चे की ठीक जगह ये शादी हो जाए, जो भी लौकिक रीति से तो दुनिया में यही कर रखते हैं। तो अचीवमेंट होती है, खुशी होती है, बहुत खुशी का लेवल बढ़ जाता है हमारा, हैप्पीनेस आगे। और लेकिन नीचे है अचीवमेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन माने अपेक्षाएं। जितनी हमारी अपेक्षाएं ज्यादा होंगी उतना ही हैप्पीनेस लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी की संपूर्ण आशाएं अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा हो, कोई अमेरिका का भी राष्ट्रपति हो, कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, आज समय के अनुसार कभी भी हर एक की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, आशाएं। तो हमें अपने जीवन में कम से कम अपेक्षाएं रखनी है दूसरों से, क्योंकि जब भी अपेक्षाएं होती है ना और पूर्ण नहीं होती हैं, अपेक्षा ज्यादा होती है पूर्ण नहीं होती है तो दुख होता है, और अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होंगी ज्यादा तो हैप्पीनेस लेवल तो कम अपने आप ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो इसीलिए इन दो शब्दों से हम अपने ब्राह्मण जीवन में बचे हैं, एक है अपेक्षा, दूसरा है उपेक्षा। अपेक्षाएं जब हम रखते हैं, हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तो हमें दुख होता है, और अगर हम दूसरे व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, ओ मैं बड़ा ये छोटा, मैं अमीर ये गरीब, मैं इतने साल से ज्ञान में हूं ये तो अभी नया है, मैं समर्पित हूं ये तो ग्रस्त में रहने वाला व्यक्ति है, तो जहां भी हम ये उपेक्षा अगर किसी की करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, वहां पर उसे दूसरे को दुख होता है, क्योंकि किसी का नेग्लेक्शन होगा उसे इंसल्ट फील होगी, और जब इंसल्ट फील होगी तो उसके मन से जो बाबा आजकल कहते हैं ये वो काम करो सबके मन से दुआएं निकले, तो उपेक्षा करेंगे नेग्लेक्ट, वो सामने से आ रहा है उसने ओम शांति की और हमने मुंह फेर दिया इधर चले गए, कोई भी बात हमारे मन में है उसके लिए गलतफहमी, तो उपेक्षा भी किसी की न करें कभी भी, और अपेक्षाएं भी कम से कम रखें। ये सदा खुशनुमा जीवन का ये एक और सिद्धांत है। और साथ में क्या है, एक व्यक्ति था, एक भिक्षा पात्र लेके राजा के पास गया कि राजन मुझे भिक्षा दे दो इसमें। तो राजा ने कहा हाँ ठीक है, मंत्री को बोला जाओ राजकोष से निकाल के इतनी मुद्राएं अशर्फी वगैरह लाओ, इसके पात्र में डाल दो। वो मंत्री गया, पूरा भर के लाया, डाल दिया, फिर भी वो नहीं भरा। फिर दोबारा मंत्री गया, दोबारा भर के लाया, पात्र देखने में छोटा था लेकिन उसमें जाते ही बस अंदर ही अंदर पता नहीं कैसे वो पात्र खाली का खाली दिखता था, भरता ही नहीं था। जब अनेक बार ऐसा हो गया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा ने कहा महाराज इसमें जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है, आप मुझे बताओ। देखने में तो ये पात्र जितना बड़ा है उससे कई गुना ज्यादा लाके इसमें मुद्राएं डाल दी लेकिन भरता नहीं है ये। तो उसने उत्तर दिया महाराज ये जो पात्र है ना ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है और यहां मनुष्य के खोपड़ी में इधर मन होता है और मन तो कभी भी तृप्त होता ही नहीं है। एक इच्छा पूरी की आपने दो और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, दो पूरी की चार और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, इसीलिए ये कभी भी तृप्त नहीं होता है, ये पात्र इसीलिए नहीं भर रहा है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि खुशी भी जो है ना इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, ये मन की एक है रूपरेखा। और इसीलिए कहा है भारतीय संस्कृति में कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सारा खेल ही मन का है। तो मन को, और इसीलिए बाबा ने बताया है बहुत खजाने हैं ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, लेकिन सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन है? संकल्प का और समय का खजाना। संकल्प मनी की तो रचना है, तो इसीलिए सबसे बड़े से बड़ा खजाना ये संकल्प और समय का है। और संकल्प और समय पर जिसने ध्यान दे दिया उसका जो तीसरा खजाना है, जिसकी प्राप्ति खजाने से जो प्राप्ति होती है, तो तीसरा है खुशी का खजाना। खुशनुमा जीवन की जो बात है जैसे, वो ऑटोमेटिकली जो यहां पर अगर हम खुशनुमा जीवन व्यतीत नहीं कर सके तो सतयुग में तो ये संस्कार लेके जाएंगे नहीं। और अब हमारा संस्कार संसार यही ब्राह्मण परिवार ही हमारा संस्कार है। जब से हम ज्ञान में आते हैं तो बाहर की दुनिया से तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सबका अनुभव है कट ऑफ होते जाते हैं, क्योंकि उनके साथ रहना ठहरना खाना पीना सब खत्म हो जाता होता जाता है। तो हमारा यही छोटा सा संसार ब्राह्मण परिवार का रह जाता है। लेकिन कई बार क्या है, विडंबना यही है हमारा अपने संसार में भी ना, उसमें भी मनभेद मतभेद कभी आ जाते हैं। किसी न किसी के मन में के प्रति कोई बात कह दी दूसरे को, बस उस व्यक्ति के मन में वो बैठ गया कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, तो जब भी वो व्यक्ति उसके पास सम्मुख जाएगा उसके मन में ये बैठा है ये व्यक्ति ऐसा ही है, क्योंकि गलत भावनाएं उसके मन में बैठा दी गई है। तो क्या है कि भले कहे भी नहीं, बस सामने से भी आएंगे, एक व्यक्ति को तो मालूम नहीं, वो गुड मॉर्निंग करेगा, ओम शांति भाई जी बहन जी कैसे हो, बस दूसरा के मन में चूंकि बैठा हुआ उसके लिए गलत भावना है इसलिए वो तो उत्तर ही नहीं देंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, नजर घुमा के चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें याद आती है दादी जी की बात, बड़ी दादी जी ने एक बार हमारी बट्टी में क्लास कराई थी, कहा था कि संबंधों में कटुता आने के मुख्य दो कारण है। कौन सा कारण? एक कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। इसीलिए बाबा भी कई बार मुरली में कहता है सुनी सुनाई बात पर कभी विश्वास नहीं करो। बस वो गलतफहमी और अफवाहों का एक बहुत बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अगर मानो आपको लगता है कि फलानी बहन या फलाना भाई उससे इतने संबंध मधुर नहीं है जितने पहले थे, ऐसी भाषणा नहीं आ रही है, वो इतना ओपनली खुल के बात नहीं करते हैं, तो कभी भी समय लेकर के आओ बहन जी, मुझे 5 मिनट आपसे बात करनी है। ये गलत फहमी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ते नहीं देना चाहिए। ये एक्सपेक्ट ना करें कि पहले वो बोले फिर मैं बोलूं, नहीं, वो बोले ना बोले मुझे बोलना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे विजयमाला का मणका बनना है, दूसरा बने ना बने लेकिन मुझे बनना है। इसीलिए मुझे ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई है वो दूर करनी है। तो पहला कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग और ये चलती रहती है, तो दूसरा कारण है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, यानी बातचीत टूट जाती है, बोलना बंद कर देते हैं, आपस में कम हो जाते हैं, यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा पहले बोले, मैं क्यों बोलूं, मैं तो सही हूं, हर एक अपने को सही समझता है। तो इसीलिए, और ये संस्कार हमारा बचपन से ही डाल दिया गया है कि मैं सही हूं दूसरा गलत है। बचपन से आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा होता है, बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, माँ ही उसका संस्कार संसार है। थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा और चलना शुरू करता है, पेट के बल चलता है, फिर दो हाथ दो पैर से चलता है, घुटने से, फिर जब खड़ा होकर चलना शुरू करता है तो नेचुरली शुरू में थोड़ा डगमगाएगा, गिरेगा, फिर माँ बाप और दूसरे सब संबंधी हिम्मत देते हैं, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सहारा भी देते हैं, बच्चा बढ़ता है, चलना शुरू कर देता है, फिर तो जीवन भर चलते ही रहते हैं। लेकिन जब वो चलना शुरू करता है तो कई बार चलते चलते गिर जाता है, चोट लग जाती है, रोने लगता है, दरवाजे से टकरा गया, दीवार से टकरा गया, फिर क्या करती है माँ, आप सब है ना, हाँ, धरती को यूं मारते हैं, ऐसे वो बच्चा भी गौर से देखता है कि मतलब उसके दिमाग में बैठा दिया, तेरे चोट लगी, दुख हुआ, तेरा दोष नहीं है, ये धरती का दोष है, उसने तुझे वो हार्डशिप क्रिएट किए, ऐसा। तो बचपन से ये जो संस्कार हमारे में हो गया है, तो कहने को भले आज भी हम ये बोलते हैं कि भाई जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ दिखाते हैं तो 3 हमारी तरफ, कहने के लिए है, लेकिन हम जो है दूसरे को ही हर चीज में, इसने ये नहीं कहा होता तो मुझे क्रोध नहीं आता, इसने ये किया तो मैंने इसे थोड़ा थप्पड़ मार दिया, इसने ये किया हमारी बोलचाल बंद हो गई, आदि आदि दूसरे को जो दोष देते हैं। जिंदगी भर, हाँ शेर है, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे, आईना होता है ना, तो धूल चेहरे पर थी, प्रॉब्लम हमारी अपनी होती है और हम समझते हैं भाई आईने में शक्ल देखी, भाई चेहरे पर ये दिखाई दे रहे हैं दाग दाग, तो मेरे चेहरे पर नहीं है, शायद आईने पर है, तो दूसरे को उसको हम साफ करने की प्रयास करते हैं, लेकिन भाई जैसी शक्ल होगी वैसी तो दिखेगी, तो इसीलिए ये भूल जाते हैं। तो ये हमें अपने को समझना चाहिए कि चैरिटी बिगिंस एट होम, जो बाबा कहता है, हमारा होम तो पहला यही है हमारा शरीर, तो सबसे पहले हमें अपने को, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जब वो बदलेगा, ये संपूर्ण बनने का एक तरीका है, जिसे बाबा कहता है, हाँ खुशनुमा जीवन को ही बाबा यहां पर दूसरे शब्दों में क्या बोलता है, बेफिकर बादशाह बन जाओ। आप कैसे बनेंगे बेफिकर बादशाह बनने का, एक महामंत्र बाबा ने सबको दिया है, कौन सा, मेरे को तेरे में परिणित कर दो, बस जब हम मेरा, मेरा काम, मेरी सेवा, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा समझते हैं ना, तो फिकर आती है, प्रॉब्लम आती है, खुशी गायब हो जाती है, समस्याएं घेर लेती हैं हमें, परिस्थितियां हमें अपना दास बना लेती हैं। तो इसीलिए क्या करना है, मेरे को तेरे बाबा आप करण करावनहार हो और ये करने के लिए ये शरीर ये आत्मा मैं तैयार, बस आप कराओ मैं करता जाता हूँ, आप करावनहार मैं करावनहार। और अपने को भी यही समझो, कभी हमें भी दोनों ही पार्ट प्ले करने हैं, करणहार करावनहार। मैं आत्मा करावनहार, ये मेरी कर्मेंद्रियां करणहार, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं करा रही हूं, करा रहा हूं, हमेशा ये ही भावना रहे, स्मृति रहे। तो बस सबको भी देखते हैं उसी रीति से है, जो परिस्थितियां हमारे ऊपर, परिस्थितियां तो अंत तक आएंगी, पेपर अंत तक आएंगे, लेकिन पेपर में पास होके पेपर का हमारे ऊपर ऐसा इफेक्ट ना हो। एक था व्यापारी राजा के पास, बड़ा दो हीरे लेकर के आया और सभा में रख दिए दोनों हीरे कि महाराज इनमें पहचानी है कौन सा असली हीरा है कौन सा नकली है। तो बहुत सबने कोशिश करी, बहुत एक जैसे ही थे देखने में, बिल्कुल अंतर ही नहीं था। तो सबको ने प्रयास किया, कोई भी सही नहीं बता सके। तो एक मंत्री की बच्ची बहुत कुशाग्र बुद्धि थी, उसने कहा मैं बता सकती हूँ, छोटी सी बच्ची। तो उसने कहा हाँ हाँ बताओ कैसे। तो उसने कहा थोड़ा इसे यहाँ रख दो अलग, रोशनी है जहाँ ज्यादा धूप है पर वहां देखने में साफ आएगा, धूप में रख दिया। बस उसके बाद थोड़ी देर बाद हो गई, उसने छुआ दोनों को और बता दिया ये असली है ये नकली है। कैसे बताया भाई? हाँ मतलब जैसी परिस्थिति बदली, गर्मी हुई तो जो नकली था वो तो गर्म हो गया और जो असली था उस पे फर्क नहीं पड़ा। तो हम वो सतयुग की वो असली आत्माएं हैं, कोई भी परिस्थिति आए हमें यहाँ अपने वशीभूत न कर सके। अगर ऐसी परिस्थिति आई कि जिसमें कोई भी अगर क्रोध हो गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना से ग्रसित हो गया, तो इसका मतलब परिस्थिति ने हम पर वार कर दिया तो हम तो नकली हो गए। द्वापर कलयुग वाली जो आत्माएं हैं वो जो सतयुग को देखते ही नहीं है, वो वास्तव में उस कैटेगरी की आत्माएं तो हम है नहीं, हम तो सतयुग के आदि से आने वाली आत्माएं हैं। तो इसीलिए हमें ये देखना है कोई भी परिस्थिति आए लेकिन स्वस्थिति अपने हमारे इतनी मजबूत हो कि वो परिस्थिति वार न कर सके। बाबा भी देखो कितना ओल्ड था, 93 इयर्स। मुझे एक सौभाग्य और प्राप्त हुआ है, बाबा से तो बहुत बार मिले हैं। वैसे लौकिक रीति से बता दूं, जब बाबा से पहली बार कानपुर में मिले, हम लखनऊ में पढ़ रहे थे, कानपुर बाबा आए थे, सबने सब वहाँ गए मिलने के लिए, हम भी गए, कुछ महीने के ही बाबा के बच्चे थे तब, तो तब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे बीएससी में। तो पहुँचने में देर हो गई क्योंकि ठंडी का महीना था और कोहरा वोरा था, पहुँचना था सुबह 7-7:30 बजे, पहुँचे 8:30-9 बजे के करीब। फिर भी बाबा की क्लास पूरी हो गई थी और बाबा वैसे ही चिटचैट कर रहे थे, सब मिले। पहले तो सब बड़े बड़े लोग मिल गए, बुजुर्ग वगैरह, बाद में हम लोगों का छोटों का नंबर आया। तो जब बाबा के पास गए, बाबा ने देखा, आओ बच्चे आओ, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो हम तो नए स्टूडेंट थे, बाने कहा हाँ बाबा बस लेट हो गई, इसलिए आने में लेट हो गई, आपको इंतजार करना पड़ा। तो अच्छा, लेकिन बाबा बहुत और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर दादियां वगैरह पास में जो पुराने थे, बताया बाबा का भाव ये है, हम सब 5000 वर्ष के बिछड़े हुए बच्चे हैं, तो वो लेकिन बाबा का भाव यहां पर भी ना, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानता है, इसीलिए बाबा के माइंड में तो छपी है, देखते ही फर्स्ट इंस्टेंस में ही बाबा को उस बच्चे की जन्म पत्री पता चल जाती है। फिर बाबा से मिले, बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो मेरा लौकिक नाम श्री है, श्री होता है ना, श्री लक्ष्मी श्री, मैंने बताया श्री सिंगल सरनेम है ऐसा। तो बाबा ने फिर पूछा क्या बच्चे, फिर हमने बोला दोबारा तेजी से, अच्छा श्री। और बाबा तो बड़ा जॉली, हर एक ये महसूस करता था बाबा मेरा है, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग जैसा बाबा हो जाता था। यही तो विश्व बादशाह की निशानी है कि हर एक महसूस करे ये मेरे बाबा, जितने मुझे प्यार करता है, हर एक का यही क्लेम होता था, उतना किसी को नहीं करता। तो बाबा ने कहा आओ आओ बच्ची, गंगे दादी आओ 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 आओ, कुमार का आओ। तब तो दादियां वगैरह सब बाबा के साथ चलते थे। तो देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाप समान है, बाबा से भी ऊंचा। अब हो सकता है इतना 4-6 महीने के विद्यार्थी, तो हम तो देखते रह गए कि भाई ये तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े बाबा कैसे बोल रहा है। फिर बाबा ने बताया देखो बच्चे, अभी तो ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम आगे श्री नहीं लगा सकता, श्री तो देवताओं के, जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी ना तो इवन ब्रह्मा बाबा की आत्मा ये पवित्र है, ना शरीर पवित्र है। हाँ पवित्र हो, शरीर विकारों की उत्पत्ति है, और आत्मा भी सतयुग में पवित्र थी, अब कलयुग के अंत तक आते आते तो अपवित्र हो गई है। इसीलिए अब तुम्हें श्री जैसा बनना है, अभी तुम्हारे नाम में श्री सार्थक नहीं, तो अब बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है। तब बाबा ने नाम बदल दिया, मोहन दे दिया है, और श्री जैसा तुम्हें बनना है। तो ये भी हमारा सद्भाग्य रहा कि बस तब से श्री जैसा बनने का लक्ष्य है जीवन में, और बाबा ने जैसा बताया वैसे। लेकिन सदा खुश रहने के लिए, क्योंकि परिस्थितियां तो अभी विकट होती जा रही हैं, आप सबको मालूम है कितनी विकट हो रही हैं, विश्व की परिस्थिति, कहीं युद्ध है, कहीं सिविल वार चल रही है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो बाबा ने साक्षात्कार किए थे वो परिस्थितियां चल रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आएंगी, और भारत में तो विशेष करके प्राकृतिक आपदाएं हिला देंगी अंदर तक, तो कैसे करना पड़े। हाँ एक घटना है, एक व्यक्ति बहुत मतलब था, एक दिन अशांत जैसा था, वो एक गुरु के पास जाके बैठ गया, वहां सत्संग हो रहा था, वहां बैठ गया सत्संग सुनने लगा, तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। बस सुन रहे थे, इतनी देर में भूचाल आया, जमीन हिली बड़ी तेजी से, और चारों तरफ से आने लगे, भागो भागो, जमीन हिल रही है, आसपास के बिल्डिंग गिरने लगे। गुरुजी भी जिसके नीचे सत्संग कर रहे थे, वो तो एक कच्चा छपरा जैसा ही था, तो बस बाकी सारे चेले उठ के भागे और दूर जाके कहने लगे गुरुजी आप भी आओ, ये कभी भी गिर सकता है। लेकिन गुरुजी वहां बैठे रहे। तो थोड़ी देर बाद जब भूचाल शांत हुआ, अर्थक्वेक, तो सब लौट करके आया, लौट करके आया, गुरुजी आपको भय नहीं लगा कि इतना तेज भूचाल आ गया, ये गिर गया तो मुझे हानि पहुंचाएगा। तो गुरुजी बैठे रहे, पहले सुनते रहे कि तुमने देखा नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहाँ भागे थे गुरुजी, आप तो यहाँ के यहीं बैठे थे। नहीं नहीं फर्क ये था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अपने अंदर। ये अभ्यास अभी हमें भी चाहिए, कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, कोई बाहर तो हम सॉल्यूशन करें, जो भी संभव है, लेकिन अंदर भागने का अगर हमारा अभ्यास होगा तो अंदर भागने के अभ्यास से बाहर तो अति हलचल, लास्ट पेपर ही है बाबा ने कहा है, अति हलचल में अति अचल। ये लास्ट पेपर और ये लास्ट सॉल्यूशन अति अचल होना, जिससे कि आप विजय माला का बड़का बन जाएंगे, विजय रतन बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा बच्चों को कहता है, अगर विजयी बनना है अंदर जाने का अभ्यास हो एकांत में, क्योंकि वर्तमान समय जो भी पेपर आने हैं ना, उसमें एक चीज की बड़ी आवश्यकता है। पेपर तो सब जानते हैं, पेपर कौन से आने हैं और पेपर में कौन सा शक्ति की जरूरत है। पेपर में पेपर को पहचानने की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति, ये दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। और ये शक्तियां कैसे आएंगी? एकाग्रता से। तो अभी बच्चों को एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने का बहुत बहुत अभ्यास करना है, यही अंत में काम आएगी एकाग्रता की शक्ति। और एकाग्र होके चारों तरफ सब कुछ हो रहा है, हम हैं, लेकिन अगर हम कहें हमारी बुद्धि कहीं और एकाग्र है, जिसे बाबा बोलते हैं क्लीन और क्लियर बुद्धि, तो एकाग्रता जितनी बढ़ती जाएगी, और एकाग्रता के निमित्त जो कारण है वो है एक एकांत, अंदर का एकांत, बाहर का एकांत, और इकोनॉमी, संकल्प की और समय की इकोनॉमी। जितना समय और संकल्प हमारा बचत हो, कम से कम खर्च हो, वो ही इकोनॉमी हमें जैसे लौकिक में भी ना धन कमाते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी करते हैं और बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं या आई वेला के लिए मुश्किल समय के लिए रखते हैं, उन्हें जीवन में कठिनाई नहीं होती है। और जो अगर पूरा का पूरा आया और खर्चते रहे और समय पर जब आवश्यकता हुई तब नहीं हुआ, तो उन्हें जीवन में कठिनाई होती है। तो इसीलिए ये इकोनॉमी और ये सब चीज आएगी एका नामी से, एक का ही नाम, एक की ही स्मृति होगी, तो उससे ही इकोनॉमी भी आएगी, एकांत भी होगा और साथ साथ एकाग्रता हमारी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए ये एकाग्रता जीवन में बहुत 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 आवश्यक है। तो एक एकाग्रता होगी, जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही बताना चाहेंगे कि अंतिम समय है, मैंने ये तो बताया आपको सारा विश्व के अंदर, अब सदा खुश रहने के लिए ऐसी परिस्थितियां भी जब आएंगी, किसी को भी हम ना देखें, क्योंकि हमारा परिवार तो बढ़ता जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति आएंगी जब देखेंगे, अरे ये इतना पुराना भाई, इतनी पुरानी बहन, अभी भी इनके अंदर ये कमी है, ये विकार है, इसमें इनका ये वेस्ट टाइम एनर्जी ये कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी रफ्तार भी कम होने की गुंजाइश है। तो इसीलिए दूसरे को देखें और अरे ये तो रेस है, इसीलिए तो बाबा ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, पुराने पुराने आगे जाने वाले वो धीमे पड़ेंगे, तभी तो पीछे वाला आगे जाएगा, और रेस में फर्स्ट लास्ट सो फास्ट का जो गायन है वो उन्हीं बच्चों के लिए है। विजय माला का भी एक नियम है, बाबा ने क्या बताया है माला के लिए, वो तो है 108 ही नहीं है, नई नई लड़ियां लगा देंगे, लेकिन बाबा ने एक बात खास बताई है कि विजय माला में कौन, हर एक की सीट बुक है, रिजर्व है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में भाई ये शेड्यूल कास्ट का, ये रिजर्व कैटेगरी, ये बैकवर्ड कैटेगरी, ये माइनॉरिटी का सीट रिजर्व होती है, ऐसे ही बाबा की माला में अगर सारे के सारे 1936 वाले हो गए होते तो आपका और हमारा क्या होगा, कभी सोच ही नहीं सकते माला में आने में। तो इसीलिए बाबा ने अभी तक रिजल्ट नहीं, लास्ट तक रिजल्ट ये डिक्लेयर नहीं, क्यों, क्योंकि बाबा की माला में सब प्रकार के मणके हैं, कितने हैं कौन है ये नहीं डिक्लेयर है, लेकिन उसमें आदि रतन है तो लास्ट में आने वाले भी हैं, कुमार हैं अधर कुमार भी हैं, कुमारियां हैं अधर कुमारियां भी हैं, भारतवासी हैं विदेशी भी हैं उसके अंदर, और पुराने से पुराने नए से नए सब प्रकार के बच्चे। तभी तो गॉड को ईश्वर को न्यायकारी बोलते हैं, अगर सभी पुराने ही ले लेता तो न्यायकारी कहाँ रहता। इसीलिए अगर हम, और इसके लिए एक ही साधन है, हमारे मन वचन कर्म द्वारा जो भी एक्टिविटी हो वो हमारे मन को न खाए, हमारी कॉन्शियस को बाइट न करे। ऐसी जब भी हम कोई गलत काम करते हैं या सोचते हैं या बोलते हैं, किसी को नहीं पता, कोई को उसका वो नहीं है, हमें भय नहीं ये क्या बोलेगा, लेकिन हमारी अंदर की अंतरात्मा हमें खाती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मर्यादाओं के विरुद्ध बात है। तो इसीलिए कॉन्शियस हमारी बाइट कभी ना करे, ऐसा हमें करना है, और वो कॉन्शियस बाइट नहीं करेगी हम सदा खुश रहेंगे। और सदा खुश के लिए ये भी एक महामंत्र है जो अनेकों बातें हुई उनमें, कि ऐसा कोई कर्मणा ना हो जो अंदर हमारी अंतरात्मा में खाए। इसलिए अब हमें क्या करना है, बाबा की तरह, बाबा ने अंत में बताया अंतिम दिन क्यों, क्योंकि बाबा को हमने लास्ट में जब देखा, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अंतिम समय मैं दो आसाम में ONGC से, मैं इंजीनियरिंग पास करने के बाद ONGC में पोस्टेड था आसाम में, और वहां से बाबा ने अपने पास बुला लिया, सबसे दूर से दूर आसाम था, विदेश में कोई सेंटर नहीं था, और वहां पर मुझे बाबा की जब अंतिम कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। हमेशा तो बाबा कहते थे कि आओ बच्चे सुनाओ अपना हाल, लेकिन तब बाबा की वो एकाग्रचित अवस्था बन गई, बाबा देखते थे, दृष्टि दी, और बाबा, बच्चे ये सोच रहे हो, अच्छा ये संकल्प चल रहा है, ये प्रश्न पूछने आए हो, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बाबा उस प्रश्न भी बता देते थे, समाधान भी कर देते थे। और ये क्यों हुआ, क्योंकि बाबा ने खास करके 2-3 साल पहले से ही समेटना शुरू कर दिया, बहुत विस्तार था सब हर एक को, और अंतर्मुखी और एकांत और एकाग्रचित बाबा होते चले गए। हम सब का भी ये वानप्रस्थ अवस्था अंतिम समय, तो अब हम सबको भी जो फैलाव कर रखा हो बिजनेस का, घर गृहस्थी का, धन का, उन सब का हमें समेट करके ये करना। तो इसीलिए, और इसीलिए बाबा ने अंत में अपना तन और मन, जो बाबा ने आपको बताया ना, दोनों को हमें चूंकि पवित्र कर रखना है, अंत में ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर जो है, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इनको भी हमें नियमित योगदान करते चलना है, जिससे हमारा ये तन भी पवित्र होता जाए। और मन के लिए तो हम सब पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, रोज ज्ञान योग धारणा सेवा कर रहे हैं, तो इस तरह हमारा जीवन भी, प्रतिदिन का जीवन खुशनुमा रहेगा, और अंत में कर्मातीत भी बन जाए। ओम शांति, ओम शांति।
खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा।
डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं,
सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं,
नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के
अमर है वो कभी नहीं मरते हैं,
नाम सितारों में अपना लिखाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा।